और इसके बाद फिर अल्लाह ताला का अहले ईमान के साथ मामला होगा। ये सारे मामला चल रहे होंगे, साथ ही साथ वहीं हौज़े कौसर भी है, वहीं ये सब है। अहले ईमान के साथ अल्लाह के सवाल जवाब का अंदाज बड़ा फर्क होगा। ईमान वालों से अल्लाह कैसे बात करेगा? बस एक वाक्य सुना देती हूँ, वाक्य तो बहुत सारे हैं, अहादीस से मिलते हैं। अल्लाह ताला एक मोमिन को अपने करीब करेगा, ऐसे करीब आओ मेरे करीब आओ मेरे करीब आओ, इतना बंदा वो करीब आ जाएगा अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला उस पर अपना दामने रहमत डाल देंगे। अब वो कैसे होगा वो तो गैब है, आप अपनी समझ में समझे कि किसी को बड़ा करीब करके, जैसे कहते हैं ना, अपने कलावे में ले लेना, अपनी चादर में छुपा लेना, अल्लाह उसको अपनी रहमत की चादर उड़ा देंगे। फिर उससे सवाल करेंगे, तूने फुला गुना किया था, तूने फुला गुना किया? मोमिन कहेगा, जी अल्लाह, हाँ अल्लाह किया था। एक एक गुनाह के बारे में अल्लाह पूछते जाएंगे और वो इकरार करता जाएगा। पहले दोनों ने क्या किया? चोरी और ऊपर से चिलितरी, चोर ऊपर से जीना जोर, और इतने गुनाहों की यस यस हो चुकी होगी कि ये सोचने लग जाएगा कि आज तो मैं गया, क्योंकि देखिए ना सारा कुछ इकट्ठा हो गया ना, पूरी जिंदगी के गुनाह इकट्ठे हो गए, तो वो बयान करते हैं तो लगेगा ना कि आज मारे गए। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाएंगे, अल्लाह हम सब के साथ ऐसा ही करे, मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला था, आज भी पर्दा डाल रहा हूँ, और उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा। दुआ कीजिए आज हम मुसलमान अखलाक के और अदब के उस दर्जे पे आ जाएं कि मरने वालों को छोड़ दें। सबको बताया, रिसेंटली एक शख्सियत का इंतकाल हुआ, जो चला गया उसे अच्छा गुमान कीजिए। आज किसी के पास वही नहीं आती कि आप कह सके अब्दुल्ला बिन उबई के लिए दुआ नहीं थी और फला मुशरिक है। आप लोगों के जाहिर पे कयास कीजिए, आप पर मैं थानेदार और चौकीदार नहीं है, इल्ला ये कि मरते वक्त कोई आपके सामने कह के मरे कि मैं कुफर पे हूँ, मैं शिर्क पे हूँ, आपको क्या पता कि किसी ने किस काम से तौबा की? और आप और मैं उसके मुहासिब बने तो कल अल्लाह हमारा बने, कभी ऐसी बात ना करे। वो सारी वीडियोस डिलीट कर दे जिसमें किसी दुनिया से गए हुए शख्स की बुराइयां थी, किसी ने अपने चैनल पर डाली हुई है उसको डिलीट कर दे, व्हाट्सएप में थी तो निकाल दीजिए, और दुआ कीजिए हर मरने वाले के लिए जो ईमान पे मरे कि अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना। क्या आप ये पोस्ट दे रहे हैं कि खबरदार उसके लिए दुआ भी की, वो तो ये था? तो भाई आपको क्या पता, आप एक बंदे को देख रहे हैं, अल्लाह ने अरबों खरबों लोगों का हिसाब करना, छोड़ दीजिए कुछ काम अल्लाह पे भी डाल दीजिए। लेकिन याद रखिए कि हजरत आयशा कहा करती थी, लोगों मरे हुए लोगों की बुराई ना बयान करो, अभी जिंदा बहुत हैं, उनकी करते हो वही काफी है तुम्हें। तो लिहाजा जो आज दुनिया में किसी पे पर्दा डालेगा, अल्लाह कल वहां भी डालेगा। ये है इनफरादी तौर पे। याद रखिए हिसाब किताब में अफराद के साथ साथ अंबिया और रसूल का भी हिसाब होगा, कौमों का भी होगा, यानी अहले ईमान का हिसाब अगर होगा ना तो फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी होगा और इकट्ठे भी। आप सफर करें ना तो कभी आप पासपोर्ट कंट्रोल पे पूरी फैमिली खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि एक ही बंदा घर वाला जो है मेन बड़ा होता है, उसके हाथ में सबके पासपोर्ट होते हैं। अब हो सकता है किसी एक बच्चे के पेपर्स में कोई मसला हो तो कहेंगे यू कैन गो, आप भी जाए आप भी जाए, इसको इधर रोक दो, या उससे कोई हिसाब किताब है। तो रसूलों की तकजीब करने वाली कौमों का, नबियों का एक एक का होगा, हत्ता के हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब आएगी, जो कि सबसे पहली कौम बनती है, इनकार कर देगी कि हजरत नूह आई कोई नहीं। आज भी जो बुरी चीज होती है वो बड़ों पर डाल देते हैं ना, हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें बताया ही नहीं, यानी एंड पे हर बात उस्ताद पे आ जाती है और शागिर्द साफ सुथरे निकल जाते हैं। भाई आप तो उस वक्त सो रहे थे जब उस्ताद बता रहा था, आप तो उस दिन छुट्टी पे थे, या आपको ये रूल पता ही नहीं जो पहले था, है ना? तो वहां इनकार करेंगे। फिर हजरत नूह के लिए तो एक बड़ी बात है, अल्लाह ताला कहेंगे नूह अपने गवाह लाओ, आपकी कौम तो कह रही है कि आप आई कोई नहीं, तो आप कह रहे हैं मैं तो 950 साल गया, अल्लाह को तो सब पता है, लेकिन हुज्जतें तमाम हो रही हैं। उस पे हजरत नूह कहेंगे कि अल्लाह मेरी गवाह उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हम वहां वो काम करेंगे जो दूसरे बारे की पहली दूसरी आयत में, वकजा अली का जाल ना कुम्मत वसतत ली तकूनू शुहदा अलन्नास, वहां शहादत हक की गवाहियों का मामला होगा। हम कहेंगे जाके अल्लाह 950 साल है, कौमे नूह हमें डांटने लग जाएगी, तुम तो थे ही नहीं। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं गवाही के लिए शाहिद होना लाजमी है, हाजिर होना लाजमी है, कई लोग आज भी कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नहीं है तो वो अपनी उम्मत पे गवाह कैसे होंगे। तो याद रखिए, ये मुशाहिदा नहीं, ये इल्म है। लोग कहेंगे तुम तो थे ही नहीं, फिर उम्मत मुस्लिमा के लोग कहेंगे हमने कुरान जो दुनिया की सच्ची किताब थी उसमें पढ़ा है कि तुम्हारे पास नूह आयत है, और कम अज कम 8-10 दफा हजरत नूह का किस्सा कुरान में। अब कहेंगे कि इनकी बात की सदाकत कौन करे, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा, वो अपनी उम्मत की गवाही देंगे और कौम नूह समेत फिर हर उम्मत जो अपने नबी को झुटलाएगी वो लाजवाब हो जाएगी और मुजरिम करार पाकर जहन्नुम में डाल दी जाएगी। यही मामला हूद और सालेह, शुएब, कौम लूत और दूसरे अंबिया की कौमों के साथ होगा। और उसके बाद फिर लोग कहेंगे एक बार हमें दुनिया में भेज दें, हमने देख भी लिया, हमने सुन भी लिया, एक बार दुनिया में भेज दें, हम जरूर अच्छे काम करेंगे। अल्लाह कहेगा अब ये नहीं होगा, अब तुम्हें अपने करतूतों का मामला जानना होगा। यहां वो सारी बातें जो आप कुरान में पढ़ते हैं ना, अल्लाह ये वो लोग जिन्होंने हमें भटकाया था और जिनके पीछे अंधे बनकर चले थे, जिनकी अंधी तकलीद करते थे, एक बार उनको बुला और उनको हमसे दुगना अजाब दे, एक हमारा और एक उनका। अल्लाह ताला कहेंगे उनको भी दुगना, तुमको भी दुगना। और वो सारी कहानियां जो कौमों के साथ होती हैं कुरान में, वहां फिर एक एक के साथ होगा। और याद रखिए कि ये तो है एक अमूमी बात है, इस किस्म के सवालों जवाब के अलावा फिर इंसान के जो बाकी अमाल है उसका इनफिरादी तौर पे मुहासबा भी मैदान महशर में हो रहा होगा। और हकूकुल्ला में सबसे पहला हिसाब सवाल नमाज का होगा, जो नमाज में नाकाम रहा वो नाकाम हुआ, उसके बाकी भी नहीं कबूल, और जो उसमें कामयाब हो गया तो कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीनहुम फी सलातिहिम खाशियून। तो नमाज जन्नत की कुंजी है, और जो हकूकुल इबाद हैं सेकंड कैटेगरी, उसमें सबसे पहले कत्ल का हिसाब होगा, क्योंकि जान ले ली तुमने एक बंदे की जो कि उसकी भी नहीं थी, तुम्हारी नहीं थी, देखा जाए तो जान भी तो अल्लाह का हक है ना। और इसके बाद फिर दूसरे अमाल का, मकतूल को कातिल से, मजलूम को जालिम से। वहां फिर हुक्मरानों और अवाम के मामले चल रहे होंगे, राय और अवाम, वहां हकूक दिलाए भी जाएंगे, लिए भी जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं बादशाह हूं, मैं हकूक दिलवाने वाला हूं, आज कोई जहन्नमी उस वक्त तक जहन्नुम में नहीं जा सकता जब तक किसी जहन्नमी को उसका हक ना दिला दूं। ये तबरानी की रिवायत। तो छोटे से छोटे जुल्म और मामूली से मामूली रियाकारी और ज्यादती और हक तलफी का भी हक होगा। किसी ने पीलू की टहनी, छोटी सी मिसवाक, उसके साथ अगर इतनी भी किसी की चीज उठा ली ना, हक गजब किया, किसी की जमीन में से 1 इंच जमीन अपने नाम करवा ली, किसी की बेइज्जती की, हत्ता कि किसी जानवर पर भी जुल्म किया, ज्यादती की, उस पर बोझ ज्यादा डाल दिया, उसको खिलाया नहीं या पानी नहीं दिया, वहां वो सब हिसाब होंगे। वो जानवर जिंदा किए जाएंगे, वो जानवर उस बंदे को लताड़ेंगे, यानी वो नीचे होगा और वो उसको रौंदेंगे। वहां फिर जानवरों में से बेसींग वाली बकरी और सींग वाली बकरी का हिसाब होगा, फिर दोनों को कहा जाएगा मट्टी बन जाओ। इस मंजर को देख कर काफिर परेशान होगा। तो आप जरा सा सोचिए कि क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या उस दिन जो कुछ होने वाला है हम इसके लिए मौजूद हैं? और ये सारा कुछ वहां होगा। अब हम चलते हैं अपनी उस हदीस पे जिसकी बुनियाद पे हम देख रहे हैं, पिछली दफा बात की थी उसमें से पहली बात मैं दोहरा देती हूँ उर्दू में। अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से कि क्यामत के दिन 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में रखेगा, जिस दिन इसके सिवा कोई और साया नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से पहला इमामुन आदिल यानी अदल करने वाला हुक्मरान है। और हम ये भी देख चुके कि अमूमन नमाज रोज़ा आसान होता है, लेकिन अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों के खिलाफ कोई फैसला देना ये बहुत मुश्किल होता है। कभी खानदान आड़े आ जाता है, कभी बिरादरी, कभी बच्चों की मोहब्बत, और कभी ससुराल वाले अच्छे ना लगने। तो इमाम से मुराद हम काफ़ी डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं। आज आपके साथ कुछ हदीसें शेयर करूंगी और कुछ इस तारीख के वाकयात, ताकि आप इस मौजू को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी कहते हैं वल मुराद बिही साहिबुल विलायतुल उज़्मा, एक जुमला याद रख लें, कहते हैं कि इमाम से मुराद वो आदमी जिसे विलायत उज्मा हासिल हो, यानी वजीर आजम कह लें, अमीरुल मोमिनीन कह लें, खलीफतुल मुस्लिमीन कह लें, सदरे पाकिस्तान कह लें, प्रेसिडेंट कह लें। अब ये पहला लेवल है, लेकिन साथ ही कहते हैं वयल ताहिकु बिही, और इसके साथ हर वो शख्स भी शामिल है जिसे मुसलमानों के आपस के मामलात में से किसी मामले में हक के विलायत हासिल हो और वो इसमें अदल से काम ले। तो हर एक अपनी जगह बड़ा है, किसी मुल्क का हुक्मरान, सूबे का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, शहर का नाजिम, किसी महल्ले का काउंसलर या कोई मामूली अफसर, किसी गांव का चौधरी, पंचायत का सरबरा, किसी कॉलेज या मदरसे का सरबरा, किसी मस्जिद का मुंतजिम, इस पे पिछली नशिस्त में बात भी हुई डिटेल से, कोई बंदा जो अपने मातहतों के हक में इंसाफ से काम लेता था, वो सब इसमें आएंगे। फर्ज शनासी का सबूत देना है आपको, मुझे जहाँ अथॉरिटीज मिल जाती हैं वहाँ जिम्मेदारियां भी हैं, अथॉरिटीज ब्रिंग्स लाइबिलिटीज, तो लिहाजा अल्लाह तला ऐसे लोगों को लेकर आएगा। और शौहर और बाप, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन आन रईयती ही, उनसे पूछा जाएगा बेटियां क्या करती थी, ये बेटे किधर थे, पूछा जाएगा। चरवाहे हैं, हमें अल्लाह को पैदा किए हुए दरख्तों से टूटे हुए बच्चे नहीं देता, एक छोटे से फीटस को एक न्यूबॉर्न बेबी की सूरत में हमारी गोद में लाता है, क्यों तरबियत नहीं की, ये क्यों बच्चे बिगड़ गए तुम्हारे। इस 7 वाली हदीस में दो कैटेगरीज यूथ के मुतल्लिक है, जहां आएगी वहां बात करूंगी, लेकिन यहां अपने ऊपर लीजिए, आपको बच्चों की फिक्र है, अल्लाह को आपकी फिक्र है, क्या आपने हक अदा किए अपने बच्चों का। अगर आप माँ हैं या बाप हैं, क्या आपने अपनी औलाद का हक दिया है माजरत के साथ। हजरत उमर के पास एक शख्स अपने बच्चे को ले आया था, ए उमर आप बताइए कि माँ बाप के क्या हकूक हैं, हम हमेशा यही बात करते हैं, मेरा बच्चा ये मेरी बात नहीं मानता। तो यंग लड़का था, उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप मुझसे जो पूछना चाहें पूछे, मैं आपको जवाब दे दूंगा, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि औलाद होने के नाते, बेटा होने के नाते मेरा क्या हक था मेरे बाप पे, यानी चिल्ड्रंस के राइट, किड्स के राइट क्या हैं। तो तीन बातों में, पहली बात उमर ने कहा कि तेरे तेरे बाप पे तीन हक हैं, और उसमें पहला ये था कि तुझे अच्छी माँ देता, और दूसरा तुझे अच्छा नाम देता, और तीसरा फिर यह कि तेरी अच्छी तरबियत करता। तो उस बच्चे ने कहा कि फिर मेरी बात सुन ले, माजरत है लेकिन मेरे बाप ने मेरे ये तीनों हक अदा नहीं किए, इसने मेरा नाम जवाला रखा, ये जो हम कहते हैं ना जाले लग गए, अरबों का कल्चर था जानवरों के और कीड़े मकोड़ों हशरात पे नाम रखने का, बेमानी नाम है। इसने गैर मुस्लिम काफिर से शादी की, मेरी माँ चूंकि इस्लाम पे नहीं थी तो मेरी तरबियत भी नहीं अच्छी की। तो हजरत उमर ने उस बूढ़े शख्स को कहा कि चले जाओ, तेरे बेटे का नहीं तेरा कसूर है, कभी आप और मैं सोचें कभी हमारे साथ ये हुआ तो क्या होगा। वो कहते हैं ना कि मुकदमा करने गए फंस गए, तो क्यामत के दिन सबसे पहले औलादों का, वालदैन का हिसाब होगा। और आपका अपने बच्चों के मामले में क्या हिसाब होना है, इंसाफ के तकाजों को पूरा किया आप अपने बच्चों में, बेटों और बेटियों में, या सारे बच्चों में इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुल्लाह वअदिलु फी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल किया करो, यानी अल्लाह का डर और औलाद के बीच में अदल। और ये सही बुखारी की रिवायत है 2447, जिसमें अल्लाह के नबी ने ये सबक सिखाया कि अपनी औलादों में अदल किया करो। अगर किसी सहाबी ने लाइल्मी की वजह से औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं किया तो अल्लाह के नबी ने टोक दिया और इंसाफ का हुक्म दिया। बड़ी मारूफ रिवायत है, आप सबको आती होगी, रेफरेंस लिख लीजिए, नोमान बिन बशीर रावी हैं इस हदीस के, और बुखारी में 2446 नंबर की यह हदीस है कि अल्लाह के नबी के सामने एक मामला हुआ, और वो क्या था, ये कहते हैं कि मेरे वालिद मुझे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की मैंने अपने इस बच्चे को एक गुलाम तोहफे में दिया है जो मेरा अपना है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुमने अपने सारे बेटों को इसी तरह का गुलाम दिया, बाप ने कहा नहीं, तो आपने कहा फिर उससे भी वापस ले लो। दुनिया में देने को हिबा कहते हैं, मरने के बाद विरासत बढ़ती है, जिंदगी में भी अदल इंसाफ। तो लिहाजा औलादों के साथ इंसाफ कीजिए। अब एक बच्चा पास रहता है, एक दूर है। अब जो पास रहता है उसको आप हर वक्त डील कर रहे हैं, जो दूर है। एक बेटी की मिसाल दे दें, बेटी एक पास है एक दूर है। अब जो कुंवारी है एक शादीशुदा है, तो अब देन लेन में फर्क हो जाएगा ना। लेकिन मुराद है कि डिस्क्रिमिनेशन ना करो औलाद में। फिर इसके बाद अदल इंसाफ की फिजा कायम करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होती है। एक मिसल मारूफ है, अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। यानी जो बादशाहों के तरीके होते हैं ना, लोगों के वही तरीके होते हैं। हुक्मरान जैसी फिजा पैदा कर दें, लोगों पर उसी का असर होने लग जाता है। अवाम का बोझ हुक्मरानों के कंधों पर होता है। अगर वो इंसाफ नहीं देंगे तो लोगों में भी चोरी चकारी और एग्रेशन शुरू होगा। जरा सोचिए, क़यामत के दिन अर्शे इलाही का साया मिल जाए, कितने बुलंद मर्तबे की अलामत है। क्योंकि किसी जगह का हुक्मरान होना ये छोटी बात नहीं है। कभी कभी आपको अपने करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ फैसले देने पड़ते हैं, कभी इज्जत और शर्फ वाले लोग सामने होते हैं, आपको उनकी सिफारिश रद्द करनी पड़ती है। सीरत में आप सबने सुना होगा एक वाक्या, कबीला महजूम की एक औरत थी, अल्लाह के नबी के दौर में, बड़ी बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखने वाली। उसने चोरी कर ली, कुरैश अले परेशान थे, कहने लगे कि इतनी बाइज्जत औरत पे चोरी का मुकदमा चलेगा तो सारे कबीले की आपकी मेरी जुबान में नाक कट जाएगी। चलो क्या करें, अल्लाह के नबी के पास किसी को भेजते हैं कि सिफारिश करें, पर जुरत कौन करे? देखिए, गलत चीज की आपके सामने कोई सिफारिश ना करे, ऐसा आपका कंट्रोल होना चाहिए। खैर, कहने लगे उसामा बिन जैद को भेजते हैं। हजरत उसामा को भेजा, बच्चे थे, जो लोगों ने कहा होगा इन्होंने जाके कह दिया कि इनकी सजा में कमी कर दें। अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदल गया। उसामा तो अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश करता है। फिर आपने कहा, इन्नमा अहलकल्लज़ीना क़ब्लकुम, तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक कर दिए गए क्योंकि अन्नहुम कानू इज़ा सरक फीहिम अश्शरीफ़ तरकूहू, जब उनका कोई बड़ा खाते पीते घर का आला मनसब का बुलंद रुतबा शख्स चोरी करता तो उसको छोड़ देते, वह इज़ा सरक फीहिम अद्दईफ़, और जब कोई कमजोर आदमी, छोटा, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं कमी कमीन, कोई बेचारा, उसके साथ क्या करते हैं? अकाम अलैहिल हद, उस पे हद लगाते। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती, ना करनी थी ना की, ना तसव्वुर हो सकता है ऐसी प्यारी हस्ती से, लेकिन बाप अपनी बेटी के लिए ये कह सकता है, मैं आप नहीं कह सकते। और ये बुखारी के अल्फाज है 2446 नंबर में, फरमाया अगर वो भी चोरी करती तो मैं जरूर इनका हाथ काट देता। ये है आज हमारे मुल्कों का मसला। गाय भैंस बकरी चोरी करने वाला जेल में पड़ा हुआ है, कोई किसी की साइकिल चोरी करने वाला जेलों में है, और बड़े बड़े चोर चोरियां करने वाले फिर जाते हैं सिफारिशों की बुनियाद पे। क्या कहेंगे आप, क्या ऐसी जगहों पे अमन चैन आ सकता? जिसके हाथ में अथॉरिटी, वो कहते मेरे लिए कोई रूल नहीं है, बाकी सारे आपके लिए हैं। तो लिहाजा इस पे गौर की जरूरत है। ये तो अल्लाह के नबी की मिसाल थी ना, एक और मिसाल लीजिए हजरत उमर के दौर की। आप पढ़िए अल फारूक नाम की किताब, आपके पास होनी चाहिए, दारुस्सलाम की छपी हुई, हजरत उमर के नाम पे एक पूरी बुक, इतनी बड़ी, दो वॉल्यूम है मेरा गुमान है, कि हजरत उमर की दौर के जो वाकयात है ना उस पर पूरी बुक्स हैं। अदल इंसाफ था, तो इंसाफ के तकाजों के लिए कई दफा अपने ही लीडर्स, यानी अपने ही गवर्नर और अपने वजीरों को नाराज करना पड़ता है। हजरत उमर का एक वाकया है उनके दौर के अंदर, जबला बिन अयहम गस्सान का वो जबरदस्त हुक्मरान था कि जिसके हमले का खतरा अल्लाह के नबी को अपने जमाने में भी होता था। जब अल्लाह के नबी ने इला किया अपनी बीवियों से नाराज होकर एक महीने के लिए, तो जब खबर फैली कि बहुत बड़ी बात हो गई, यानी ऐसे जैसे दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया, इस तरह के हालात थे, तो ये खतरनाक बादशाह वक्त गुजरने के साथ इस्लाम की खूबियों को देखकर जरा दिल इसका नरम हो गया, कहते हैं ना दिल मोम हो गया। इसने इरादा किया कि मैं मुसलमान हो जाता हूं। जिस वक्त इसने अपने इस्लाम का इरादा किया वो हजरत उमर की खिलाफत का दौर था। इसने अल्लाह के नबी के बाद आपके इस नुमाइंदे उमर को एक खत लिखा और कहा कि मैं आपकी खिदमत में मुसलमान होने के लिए हाजिर होना चाहता हूं। अब जरा सोचिए हजरत उमर को कितनी खुशी हुई होगी। हजरत उमर ने कहा, जितनी जल्दी हो आ जाओ। قاصد کو روانہ کیا. جبلہ بن ایہم یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھنا چاہیے کہ امیر المومنین اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا خطرناک دشمن سمجھ کر کچھ اور جواب دیں. لیکن جب قاصد نے لا کر جوابی خط دیا اور اس نے پڑھا تو لکھا پایا کہ تم فوراً چلے آؤ, مسلمان ہونے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہر دکھ سکھ میں ہمارے شریک ہو گے. اب تو اس پہ جبلہ اور بھی خوش ہوا, حیران بھی. حیرانی کس بات کی, نہ حضرت عمر نے کوئی شرط لگائی, نہ دھمکی دی, دیکھیں نا دشمنی ہوتی تھی, نہ کوئی الزام لگایا, بلکہ اتنی محبت ٹپک رہی ہے حضرت عمر کے خط میں, ہمدردی ہے. ٹھارس بندی اپنے ساتھ 500 لوگ لے کر بڑے شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ کی طرف چلا. ابھی مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھا تو پڑاؤ ڈالا, سٹاپ اوور. حضرت عمر کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خوب اچھے کپڑے پہن لو, چاندی سے سجی سجائی پٹیاں لگا لی جو ایک فوج کا پروٹوکول ہوتا ہے, اور گھوڑوں پر ویلوٹ کی جھولیں بھی ڈال دیں اور گردنوں میں سونے کے توک بنا دیے, یعنی وہی جو زیور اس دور میں تو پہنتے تھے. اور اپنے سر پر اس نے ڈائمنڈز, جس کو آج کی زبان میں کہیں یا پرلز اور جواہرات کا تاج اپنے سر پہ رکھا, کبوتر کے انڈے کے برابر دو نہایت اور قیمتی موتی تاج کی دونوں طرف لٹک رہے تھے, شاہی لباس بھی پہن لیا, بڑے ٹھاٹ سے مدینہ میں داخل ہوا. اب حضرت عمر نے کیا کیا, اس کی مہمان نوازی کی, عزت دی, اس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا, خوش کیا یعنی ویلکم کیا. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں معیوب بھی لگی ہوں, لیکن حضرت عمر نے اس کو اوور لک کیا. جبلہ مدینہ میں ٹھہر گیا, حج کا موسم آ گیا, حضرت عمر حج کے لیے نکلے تو کہا کہ تم بھی چلو, اس کو بھی لے لیا. لیکن ایک ایسا واقعہ آیا کہ جس نے جبلہ کی زندگی کا رخ بدل دیا, اور وہ کیا تھا کہ طواف کے دوران اس کے بالکل پیچھے پیچھے ایک ینگ نوجوان بھی طواف کر رہا تھا, اس کا پاؤں اس کے قیمتی تہبند پہ جا پڑا, جس سے اس کا جبلہ کھل گیا, یعنی اس کا جو تہ بنتا وہ کھل گیا. یہاں اس کی وہ رونت پلٹ آئی جو غسان کا بادشاہ ہونے کے ناطے سے تھی. اس نے اس شخص کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور ایسی زور سے تماچا مارا کہ اس کی آنکھ چلی گئی. خیر طواف کی حالت میں تو وہ نوجوان کچھ نہ بولا, لیکن جب قبیلے میں گیا تو اس نے یہ واقعہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا, تو وہ سوشل میڈیا تو نہیں تھا, لیکن جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی. کئی 100 لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آ گئے اور جبلہ پر ایک مقدمہ دائر کر دیا, دعویٰ تھا. حضرت عمر نے جبلہ کو طلب کیا. اب ذرا اس کا مکالمہ سنیے, یہ پورا واقعہ حدیث میں. حضرت عمر نے پوچھا, تم نے اس نوجوان کی آنکھ کیوں پھوڑ دی؟ جبلہ بولا, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی, بھرے مجمع میں مجھ کو رسوا کیا. حضرت عمر بولے کہ نوجوان نے تو ہمیں سارا حال سنایا ہے, اور اس کا تو پاؤں غلطی سے تمہارے تہبند پر پڑ گیا, اور تم نے اتنی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا دی, یہ تو ظلم ہے. جبلہ کہنے کا, تو ایک غریب آدمی کو خوش کرنے کے لیے آپ اس واقعے کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں, یعنی کیا ہو گیا جی, میں نے ہی آنکھ پھوڑی ہے, غریب کی پھوڑی ہے نا. حضرت عمر بولے, اسلام امیر اور غریب کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتا, اگر اسلام میں بڑائی ہو سکتی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, حجرات کی آیت ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں آ گیا, مال دولت رنگ نسل کی بنیاد پر کوئی بڑائی نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا, اس نوجوان سے معافی مانگ لو نمبر ایک, اور اس کو کچھ دے کر راضی کر لو, یہ ایک چوائس ہے, ورنہ آنکھ کے بدلے آنکھ, علین و بلعین, سورت مائدہ. جبلہ کہنے لگا, تو کیا میں اس غریب نوجوان سے معافی مانگوں جس کی چادر میں پیوند لگے ہوئے ہیں؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میں نہیں کر سکتا یہ. حضرت عمر نے کہا, تو پھر اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. جبلہ بولا, میں غسان کا بادشاہ, میرا باپ بادشاہ, میرا دادا بادشاہ, میری آنکھ اور اس کی آنکھ برابر کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ کے بدلے میں میری آنکھ نکالی جائے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اسلام کی نظر میں ادنا اور اعلیٰ सब बराबर है। तुम या तो इस नौजवान को राजी करो या फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। जब ला कहने लगा, अगर आपका इस्लाम ऐसा है, अल्लाह अकबर, जो जेरे दस्त यानी जो आपके अंडर लोग हैं उनके मुकाबले में जबरदस्तों की परवाह नहीं करता, यानी वो छोटे बड़े का फर्क नहीं करता और बड़े लोगों और हाकिमों को खास हकूक नहीं देता, तो इस्लाम को मेरा सलाम, मैं फिर नसरानी हो जाऊंगा। हजरत उमर ने क्या कहा, जरा सोचे, अगर तू इस्लाम से फिर जाएगा तो फिर जो मुर्तद की सजा है वो तुझे दी जाएगी, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये फैसला सुनकर गस्सान के बादशाह को पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं इस्लामी अदालत में खड़ा हूं और मुसलमानों के खलीफा से बात कर रहा हूं। मुर्तद के नाम पर और सजा थी, और ये याद रखिए कि उसको भी ये सारी बातें सिखाई हुई थी ना। आइडियल दौर में ऐसे ही होता है कि जब कोई मुसलमान होता है तो उसको पूरा इस्लाम समझ आ रहा होता है, अनहोने में खड़े खड़े तो नहीं फतवे दिए जाते। खैर, वो समझ गया कि मामला नाजुक है। इसने कहा, अच्छा मुझे आज सोचने का मौका दीजिए, मैं कल इसका जवाब दूंगा। हजरत उमर फारूक ने उसे एक दिन सोचने की मोहलत दी। वो अपने पड़ाव पर आया और भागने की तैयारी की, और रात की तारीकी में अपने 500 साथियों को लेकर फरार हो गया। आप पढ़ना चाहें तो ये वाक्य सीरत फारूक आजम किताब में मौजूद है। हजरत उमर ने अपने मोजस मेहमान और बादशाह को एक गरीब की खातिर नाराज कर लिया, लेकिन अदल और इंसाफ के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। ये है जी इमाम अदल, यानी दुनिया में जब ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की हुकूमत हो जाए तो फिर वो दौरे फारूकी बनता है। आप कोई इदारा नहीं चला सकते रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए बगैर, आप कोई मस्जिद नहीं चला सकते, आप कोई बैंक नहीं चला सकते, आप हॉस्पिटल नहीं चला सकते, आप अपना घर नहीं चला सकते। उन्हीं घरों में मसले हैं, माँ बाप और बच्चों के, शौहर और बीवी के, जिधर ये हकूक और फराइज पूरे नहीं अदा हो रहे। शौहर की क्या जरूरत है कि बीवी को गालियां दे, हाथ उठाए, और बीवी सिर्फ सब्र के नाम पे सहती रहे। याद रखिएगा कि ये हमारी पूरी जिंदगी है। अल्लाह के नबी, जिनकी जुबान से अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ निकलता नहीं है, वो कह रहे हैं कि इमामुन आदिल अर्श के साए में नीचे होंगे, तो फिर बताइए आपको मुझे इसके लिए कितनी जरूरत है। और दो हदीसें बस आपके साथ कोट करती हूँ, फिर हम अगली कैटेगरी पे जाएंगे। पहली रिवायत नोट कीजिए, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल मुक्सितीना इंदल्लाही अला मनाबिरा मिन नूरिल्लज़ीना यादिलून फी हुक्मिहिम वाहलीहिम वमा वालू। बेशक इंसाफ करने वाले अल्लाह के पास नूर के मिंबरों पर होंगे, यानी वो लोग जो अपने हुक्म में, अपने घर वालों के बारे में और इनके कामों में जो इनके सपुर्द हैं, इंसाफ का एहतमाम करते हैं। तो क्या पता चला कि जो काम किसी के सपुर्द किया जाए, जिम्मेदारान, आप जिम्मेदारान हैं, आपका रवैया, आपकी चीजें दूसरों से फर्क होंगी वरना बराबर। देखिए, एयर होस्टसें और अमला, पायलट पैसेंजर्स के साथ ही आए और उनके साथ ही जहाज छोड़ के चला जाए, बल्कि वो कि हम थकी हुई हैं, इन्होंने तो बैठ बैठ कर इतना फ्लाइट का टाइम गुजारा है, हम तो थकी हैं, हम जा रही हैं सर पे पांव रख के। आप देखते हैं कि वो दरवाजे में खड़ी हो जाती हैं, अरे एक को हेलो है, बच्चे थकी टूटी हो, फिर भी उनका काम है, उनको स्माइल देना पड़ता है, जिम्मेदारियां करके पूरी जाते हैं ना। तो याद रखिएगा कैसे अल्लाह ने इस बात में हमारे लिए अमल की बात रख दी कि कोई मामला, घरेलू, इनफिरादी, इज्तमाई, इंसानियत की फलाहो बहबूद का कोई काम आप कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, जो मामला आपको दिया जाए, जब तक कुर्बानी नहीं करेंगे, जब तक हिजरत के दर्जे पे नहीं आएंगे, बात नहीं बनेगी। 13 साल मक्का में सहाबा ने ना नमाजें पढ़ी, ना रोजे रखे, ना हज, ना कुर्बानी, ना कोई लेना ना देना। और जहां बात आती है मुहाजिर का लफ्ज अंसार से पहले है, जब तक मैं और आप इस दीन के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, हिजरत नहीं करेंगे, बरकत नहीं होगी। हिजरतों और कुर्बानियों की जमीन पे पौधे लगते हैं बरकतों के। हर वक्त मुख्तलिफ मुल्कों शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदलते हैं, और मैं अपने हर साथी से इतना प्यार करती हूँ। हर एक कीमती है मेरे लिए, हर एक प्यारा है, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में निकल जो आया है। लेकिन बरकत और काम वहाँ फैलता है जहाँ के जिम्मेदारान कुर्बानी के दर्जे पे जाते हैं। अल्लाह को हालात का पता है किसके लिए क्या है, लेकिन वेस्ट, जिसको पूरा वेस्ट कहती हूँ, उसमें और आज भी गए गुजरे दौर में भी मैं देखती हूँ हमारे मुल्कों में एफर्ट्स और कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। गर्मी शिद्दत की, सांस घुटता है, और बिजली जाती 8-8 घंटे। अमूमियत पे क्यास करते हुए कह रही हूँ कि हम कुर्बानियाँ नहीं देते। कुर्बानी हम देते हैं जब दुनिया होती है, बच्चा कुर्बान करता है अपना माँ बाप का सारा प्यार और दूसरे मुल्क दूसरे शहर जाके पढ़ता है, तो उधर कुर्बानी है, कुर्बानी फिर दुनिया है। याद रखिए, कुर्बानी और हिजरत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा, ख्वाहिशात मिलेंगी। हाँ, ये पता लगेगा कयामत के दिन के दूसरों से तो अच्छे हो गए, लेकिन ये बहुत अच्छे भी हो सकते थे, ये नहीं बन सके, क्योंकि हमारे पास दुनिया बहुत है, और जितनी ज़्यादा उतनी हिरस भी ज़्यादा है उसकी, और जिसके पास नहीं है उसकी नहीं है। एक अच्छी बात शेयर कर देती हूँ, मेरी मीटिंग हो रही थी तो छोटा सा हॉस्टल है अभी, बहुत छोटा सा है, गिनती के लोगों को हम रख पाते हैं वहाँ। तो सिस्टर जो वहाँ की कोऑर्डिनेटर है, मुझे कल उनके मैसेजेस और फिर जो बातचीत, तो उसमें उन्होंने लिखा कि उस्ताजा क्वेरीज आ रही हैं, तो अब इस साल बाहर की बहुत क्वेरीज हैं, और कुछ बच्चियाँ बाहर से, उनमें से किसी बच्ची का मुझे वो सुना रही थी कि इतनी वो प्यारी बच्ची है, लेकिन वो कह रही वो बच्ची इतनी खुश है, उसको सिर्फ माँ ने एक समर कोर्स के लिए भेजा है बाहर के मुल्क से, तो उसमें जो चेंजेस हैं, और वो कहती हिलती नहीं, 3-3 घंटे बिजलियाँ जाती हैं उसके लिए। कहने पे मैंने कल इन्हें कहा कि आप और बच्चियां भी उनके लिए खुदा के लिए एसी लगवाइए, दूसरे फ्लोर पे भी एसी लग जाएगा तो बिजली कोई नहीं, बिजली लगा लेंगे तो बिल बहुत है, गम तो बड़े हैं, सोलर लगवा ले, मैंने कहा करीब 20 लाख का खर्चा है। मैं यकीन से कह सकती हूँ आपके इस मोस की यंग बच्चियों में किसी एक बच्ची को आप जरा ऐसे पसीने बहाने वाले जगह पे भेज दीजिए, आपके इस मोस का नसीब बदल जाएगा। पेरेंट्स पूछ रहे हैं आप बताएं आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए इधर करने के लिए तैयार कर देते हैं ये, लेकिन हमारी बच्चियों को लीजिए, इस पे लगाइए। तो ज़रूरत इस बात की कि हम अपने बच्चों को और ख़ुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, बड़ी सख्त मुश्किल में पड़ जाएंगे हम बाहर रहने वाले। आप ज़रा सा इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर देखें ना, तो हम कंफर्ट जोन से निकलते ही नहीं है, यकीन कीजिए। ये बहुत सख्त मार पड़ने वाली, अल्लाह के नबी ने कहा मुझे अपनी उम्मत पे फकर और फाके का डर नहीं है, मुझे ये डर है कि इनके पास माल और दौलत ज्यादा हो जाएगा, और वो इन चीजों में पड़ जाएंगे जिसमें हम पड़े हुए हैं, हमें नहीं नजर आता पर हम पड़े हुए हैं। हजरत उमर का ये वाकया हमें कितना कुछ सिखाता है, ला तखाफु न लौमत लान। और दूसरी बात आप देखिए कि जब अमीर गरीब का फर्क मिटता है ना, फिर अमन और चैन आता है। आज हमारे अपने मुल्कों का क्या मसला है, यही मसला है, इन मुल्कों में सुकून क्यों है? बजाहर जो देखा जाए अदल और इंसाफ है, ये कानून की बालादस्ती है ना, पीछे भी बैठे तो सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी। हमें इन मुल्कों ने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना सिखाया ना, तो बस यही बात है। तो अल्लाह के नबी की ये बात के क्या फरमाया आपने, इन्नल मुक्सतीन इंदल्लाहिल मनाबिर मिन नूरिल्लज़ीन यादिलून फी हुक्मिहिम वहलीहिम मा वलू। वो लोग अल्लाह के पास नूर के मिंबरों पर होंगे, यानी वो लोग जो अपने हुक्म में अपने घर वालों के बारे में और इनके कामों में जो इनके सपोर्ट किए गए हों इंसाफ का एहतमाम करते हों, और अल्लाह हमें ऐसा ही बना दे। एक और हदीस ले लीजिए, ये जो पहली हदीस है ये सही मुस्लिम की रिवायत 1737 थी, और अगली रिवायत जो आपको भी शेयर करती हूँ वो अय्यास बिन हिमार से है, कहते हैं कि قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهل الجنة ثلاثة، तीन किस्म के लोग जन्नती हैं। नंबर एक ذو سلطان مقسط موفق، दूसरा वरजुलुन रहीमुन रकीकुल कल्बी लिकुल्ली जी कुर्बा व मुस्लिम। अफीफुन, मुतअफ़फ़ुन, ज़ू इयाल, ये तीसरा है। आप पूरी रिवायत सुनिएगा। अय्यास बिन हिमार से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तीन किस्म के लोग जन्नती हैं। एक वो हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला और अमाले खैर की तौफीक से बहरावर हो। दूसरा वो मुसलमान जो हर मुसलमान और रिश्तेदार के लिए मेहरबान और नरम दिल हो। और तीसरा वो शख्स जो यालदार होने के बावजूद सवाल से बचने वाला हो। तो सारी बात का खुलासा, इंसाफ से काम लेने वाले, बेइंसाफियों से रुकने वाले, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले, दूसरों के हक ना मारने वाले, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। अल्लाह ताला हमें अपने हकूक और मामलात में और अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों में हकूक के मामलात में इंसाफ करने वाला बना दे। ये सही मुस्लिम की रिवायत थी 2865 नंबर की, जो आखिर में ये कोट की गई। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व तुबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। जी, अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इस सारे मामलात को सीखना समझना आसान कर दे, और हमें अच्छी ज़िंदगी भी दे और अच्छी मौत भी दे, और हर मामले में अल्लाह ताला हमें इंसाफ करने वाला बना दे, और हम अपनी जिस मौत को भूले होते हैं अल्लाह ताला हमें इसको याद करने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।